अपनाए उसको सारे रंग मिल जाए। बीती बातों को भूले अपनों को गले लगाए।
शांति। स्कूल का एक लड़का, क्योंकि छुट्टियां चल रही है धूप काले की, एक एप्लीकेशन देता है। सोचता है क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं है, गरीब है बेचारा, इसलिए इन छुट्टियों में कुछ तो काम करना चाहिए, कोई नौकरी करनी चाहिए। और इसी लक्ष्य से वो बच्चा एक उसी शहर में जो होटल है और वहां पर वेटर की पोस्ट खाली है, सोचता है कि मैं छुट्टियों में नौकरी करूं। और वो वहां बुलाया जाता है, पर जब वो पहुंचता है तो देखता है 21 लोग पहले से ही वहां मौजूद है इंटरव्यू के लिए, 21 बच्चे। तो वहां पर जो रिसेप्शन में जो बहन रहती है उसको वो कहता है कि एक मुझे चिट पेपर दे दो, और वो चिट पेपर पे एक वाक्य लिखता है और कहता है ये मैनेजर को जाके दे दो। तो मैनेजर तक वो चिट पेपर पहुंचता है, और जैसे ही मैनेजर वो पढ़ता है कहता है इस बच्चे को बुला लो, इसी को नौकरी पर रखना है। क्या लिखा होगा? 21 तो वेटिंग में है और ये तो अभी अभी आया। क्या लिखा होगा देवेंद्र भाई? क्या लिखा होगा? वो जैसे ही पढ़ता है मैनेजर कहता है बस इसी को रखना है, इसी को बुला लो। क्या लिखा होगा? क्या कायदे अनुसार? नहीं, अच्छा ऐसा लिखा होगा।
मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता।
अच्छा, और वो बच्चा लिखता है जब तक मेरा नंबर ना आए कोई भी निर्णय मत लेना, जब तक मेरा नंबर नहीं आता कोई भी निर्णय मत लेना। वो मैनेजर सोचता है कैसा उमंग उत्साह भरा है इसमें, कैसा कॉन्फिडेंस है इस बच्चे में कि जो ये सोचता है कि इस पोस्ट के लिए केवल मैं ही लायक हूं, बस इसके लिए जब तक मेरा नंबर नहीं आता है कोई भी निर्णय मत ले। और वो मैंने कहता है बस यही वो लड़का है जो इस पोस्ट के लिए योग्य है, और उसको बुलाया जाता है। इंस्पिरेशन, प्रेरणा, उत्साह, उमंग, ये मन की आंतरिक स्थिति है। इसका बाहर की परिस्थिति से, बाहर के व्यक्तियों से, बाहर की चीजों से, बाहर की परिस्थितियों से कोई भी कहीं पर भी संबंध नहीं है, दूर दूर तक का भी नहीं है। नहीं तो वो बेटा, वो लड़का वहां पहुंचते कितना दुखी हो गया होता जब देखता कि इतने सारे लोग पहले ही इंटरव्यू के लिए खड़े हैं, मेरा नंबर क्या लगेगा, एक लंबी कतार लग जाती निगेटिव थिंकिंग थॉट्स की। तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, निगेटिव से निगेटिव परिस्थिति में भी उमंग उत्साह वैसा के वैसा रहे, जैसे एक 90 साल का बूढ़ा रहता है, उसके बेटे ने उसको कहा कि अब आज से यहां तो बहुत हो गया, अब आप थोड़ा सा उधर वृद्धाश्रम में रहो तो सबके लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, आपके वजह से वैसे भी बहुत थोड़ी सी परेशानी हो रही है इधर सबको। तो वो बूढ़ा बेचारा वृद्धाश्रम में पहुंचता है और वहां जो रिसेप्शनिस्ट कहो या जो एक बहन, उनको लेके जाके उनका कमरा दिखाती है और कहती है ये आपका कमरा। वो कहता है बहुत अच्छा है। वो कहती है अभी आपने देखा ही नहीं है, अब पहले ही कह रहे हो बहुत अच्छा है। वो कहता है इस कमरे का अच्छा होना मेरे देखने से इसका कोई संबंध नहीं है, इस कमरे का अच्छा होने का मेरे देखने से कोई संबंध नहीं, मैंने पहले ही सोच के रखा है कि यही अच्छा है, सोच ही वैसी है कि अच्छा ही है, पहले से तैयार करके रखा है मन को कि जहां मैं जा रहा हूं वो बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा ही होगा, इसलिए अच्छा ही दिख रहा है। और जिसने ऐसा कुछ सोचा नहीं वैसे ही चला गया तो जाते ही कंप्लेंट, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, और दुख। तो वो देखती है कैसा व्यक्ति है, कोई दुख इसके ऊपर है ही नहीं, दुख का कोई प्रभाव नहीं है, वही उमंग उत्साह है। तो चाहे वो छोटा लड़का जिसने वो चिट पेपर लिखा, चाहे ये बूढ़ा व्यक्ति, दोनों में एक चीज समान है और वो है उमंग उत्साह। और ब्राह्मण जीवन अर्थात संगम युग अर्थात उत्साह का युग, संगम युग अर्थात मौज का युग, उत्सव का युग, संगम युग अर्थात गाने का युग, नाचने का युग, संगम युग अर्थात ज्ञान अमृत पीने का युग, संगम युग अर्थात मनाने का युग, संगम युग अर्थात बनने का युग, संगम युग अर्थात उड़ने का युग, संगम युग अर्थात उड़ाने का युग, संगम युग अर्थात होली बनने का और होली बनाने का युग, पढ़ने का और पढ़ाने का युग, मरने का और फंसना और फंसाना। तो ये मुरली होली की मुरली है जिसमें बाबा ने होली के राज बताए हैं। वैसे होली के बहुत सारे राज हैं, 7 तो बाबा ने गिनाए हैं और अगले 10-12 हम गिनाएंगे। तो क्या कहा इस मुरली में बाबा ने, कौन किसको देख रहा है? सबसे पहले तो बाबा कैसा है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट अर्थात सबसे ऊंचा। हाईएस्ट शब्द भगवान के लिए क्रिश्चियन लिटरेचर में बहुत आया है, ही दैट इज हाईएस्ट, हु इज ऑन दी हाई, हु इज जो आसमान पे रहने वाला है, हाईएस्ट है वो, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट। हाईएस्ट का एक अर्थ ये भी है कि वो ऊंचाई पर है, हाई, हाई अर्थात ऊंचा, सबसे ऊंचे ऊंचाई पे वो रहता है, उसे सब कुछ दिखता है वहां से, इसके लिए वो हाईएस्ट है। दूसरा वो होलीएस्ट है, होलीएस्ट अर्थात वो पवित्रता का सागर है, पाक है वो, पाक, पाक परवरदिगार कहते हैं उसको, पाकीजगी से जो भरा है, पाकिजगी का जो समंदर है वो परवरदिगार। तो वो हाईएस्ट है, वो होलीएस्ट है, ऐसा हाईएस्ट होलीएस्ट बाप किसको देख रहा है? वो डबल एच को देख रहा है। हम कौन है? होली और हैप्पी, होली भी है और कैसे हैप्पी है, क्यों हैप्पी है? बाबा मिल गया इसके लिए हैप्पी है। तो हम क्या करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और पीते हैं। क्या पीते हैं? रोज ज्ञान का अमृत। बाबा कहते ये माजून है, ये चौप चीनी है, मैं तुम्हें वखर देने आता हूं, ये तरावटी माल है, इसलिए तो पावरफुल बने हो खा खा के, तरावटी माल, माजून, हलवा, और क्या है ये ज्ञान खाने की चीजों में, चवन प्राश, चवन प्राश है ये, चौवन ऋषि था एक, जिसने आंवले से एक औषध बनाई थी, और वो जब उसने खाई तो वो बूढ़ा था, जवान हो गया, और उस औषधि को नाम रखा गया चौवन प्राश, जो अब उसके थोड़े से तमो प्रधान रूप में विद्यमान है संसार में। तो ये ज्ञान चौवन प्राश है, जो हमको बूढ़े से जवान बना देता है। संजीवनी बूटी है ये, दूध है ये, और क्या है? वो नहीं, टॉनिक है, मक्खन है। और भक्तों को क्या दिया बाबा ने? छाछ। तुमको मक्खन, उनको छाछ। ये क्या है? जीवन बन गया है रसवंती, जब ज्ञान रस जो पिला दिया, दिल से निकले बाबा हर पल, गीत है ना, तो रस है ये, ज्ञान रस है। रसवंती खोली है भगवान ने बेहद की संगम युग पर, जिसमें का रस हम खाते हैं और छिलके भक्त। तो हम ज्ञानामृत पीते रहते हैं, खुशी में नाचते रहते हैं, सुख में गाते रहते हैं, दिल से गाते रहते हैं। वो लोग अल्पकाल का मनाते हैं, तुम सदा काल का मनाते हो। तुम्हारा यादगार वो लोग फॉलो करते हैं उधर, जो तुम अब करते हो वो लोग वहां फॉलो करते हैं। होली की बात नहीं, कोई भी त्योहार, हमारा हर दिन ही क्या है? त्योहार है। सुहेज, सुहेज अर्थात बाबा कहते संगम युग है सुहेज का युग। सुहेज अर्थात फेस्टिवल, फेस्टिविटी, उत्सव, उत्साह का युग है। हर दिन उत्साह, हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, हर दिन न्यू ईयर है, हर दिन शिवरात्रि है, हर दिन क्रिसमस है, हर दिन बड़ा दिन है। तो होली के त्रिमूर्ति राज, होली के तीन दिव्य राज, होली का दिव्य रहस्य, ऐसे ऐसे शब्दों का बाबा ने प्रयोग किया है। कहा तो था तीन बताऊंगा, पर और एक बात करते करते आगे बढ़ा गए, और एक बात। तो सबसे पहला काम बर्निंग बिजनेस, जलाना। किसको जलाना है? वो लोग होली का जलाते हैं, और तुम वो लोग होली का जलाते हैं, तुम माया को जलाते हो। क्या कहा बाबा ने? तुम माया को जलाते हो। फिर दूसरी जगह कहा, जलाना अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार को तुम यहां जलाते हो, पर कंपैरिजन में तुम माया को जलाते हो। पुराने संस्कार स्वभाव कैसे जल जाए? बिल्कुल रहे ही नहीं वो, तुम्हारे गीत अब खत्म हो जाए। अब तुम्हारे नए गीत हो, कौन से तीन नए गीत हो? गरिमा बहन, इस मुरली में कौन से गीत हो तुम्हारे? प्रभाकर भाई, कौन से गीत हो नए? कौन से गीत हो तुम्हारे? तुम्हारे कौन से तीन नए गीत हो? देवेंद्र भाई, तुम्हारे गीत कौन से हो? ओहो, तुम्हारे गीत हो वाह, और तुम्हारे गीत हो आ। ये तुम्हारे तीन नए गीत हो, आ, वाह और ओहो। तो तुम्हारे गीत नए हो, अभी पुराने गीत बंद, अभी नए नए गीत गाना है। ओहो, बोल के बताओ। वैसे नहीं, ओहो। तो नए गीत, नई रीति, नई रस्म, नया दिन, नई शुरुआत, नई रिसर्च, सब कुछ नया हो, नई खोज, नई जस्तजू, सब कुछ नया 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 नया, हर दिन नया, नई मुरली, नया अमृत वेला, नई बाप से बातें, सब कुछ नया, नाम निशान ना हो पुराने का। तो होली अर्थात जला देना, पहला काम क्या करते हैं? जला देना है, पुराना सब कुछ मिटा देना, भस्म कर देना, जल जाए, देखना है जलते हुए। ये स्वभाव जल गया, ये संस्कार जल गया, माया जल गई, वो पुराने दर्द के गीत आहा ओहो वो सब
नहीं, आहा वो तो नहीं।
कहने का टोन, आ ये वाला। तो दूसरा होली का राज, रंग में रंगना, श्रेष्ठ रंग में, बाप के रंग में रंगना। तो उसके वो ज्ञान, उसका ज्ञान हमारा, उसके गुण हमारे, उसके संस्कार हमारे, उसकी शक्तियां हमारी। तो जैसा वो वैसे हम, लास्ट में भी बाबा ने कहा, बस ये याद रखो, जैसे वो जैसे मैं वैसे तुम। ये सब ये क्या है? ये स्लोगन भी है, ये वरदान भी है, ये याद भी है। इसमें फिर याद रहेगा तुमको सफलता जन सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, पिरोया हुआ हार है। तो ये याद रखना, जैसे वो है वैसे मैं, वो और मैं अब दोनों एक ही बन गए, अलग अलग नहीं रहे। तीसरा राज होली का, मंगल मिलन मनाना। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, मिलन मना रहे, बाप और बच्चे का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन मनाना ये तीसरा राज। चौथा राज होली का, हल्के लाइट मूड, तुम डबल लाइट रहते हो, इसी का यादगार उधर हल्का बनना दिखाया है। तो ये एक बहुत ऊंची धारणा है, हल्का रहना ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि यहां पर भारी करने वाली आती रहती है। एक बाप दूसरा मैं, पर्दे के नीचे चूहा बिल्ली कुछ कुछ निकल के आता है भारी करने के लिए। कौन कौन भारी करता है हमको, नहीं कौन भारी करता है, किसके कौन से शब्द भारी कर देते हैं, किसके कौन से शब्द भारी कर देते हैं, तुम तो हो ही ऐसे। कोई हमारे बारे में गलत बोलता है, झूठ बोलता है, निंदा करता है, ब्लेम करता है, अफवाहें फैलाता है, पॉइंट अविश्वास करते हैं, तो भारी हो जाता है मन, सोचते हैं हमने इतना सिंसियरली किया फिर भी ऐसा ऐसा कहते हैं, बहुत भारीपन। बाबा कहते हल्के रहो, चाहे कोई खुश हो चाहे गाली या हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार ले। जिसको जो कहना है कहने दो, आग लगे बस्ती में और हम रहे अपनी मस्ती में। भगवान के साथ दोस्ती और दोस्ती अर्थात मस्ती। हल्का लाइट मूड, कोई भी भारी न करे, क्योंकि हर चीज भारी करने वाली है यहां पर। अगर हम भारी हो जाए तो कैसे चल पाएंगे इस ब्राह्मण जीवन में, खुशियां कैसे। बाबा कहते उमंग उत्साह है, खुशी का युग है, नाचो गाओ मौज करो। कहां से नाचो गाओ मौज करो, तो फिर तो भारी हो जाएंगे। जैसे कोई मधुबन में आए और उनको एक कमरा दिया गया, दो दिन के बाद कहा ये कमरा बदल दो दूसरा, फिर उसको दूसरा कमरा मिला। दूसरा कमरा मिलने के बाद फिर कहा अभी नीचे जाओ, जैसे विदेशियों को शांतिवन, फिर नीचे गए, फिर वहां पे और कमरा बदल दिया। बेचारे भारी हो गए सोच सोच के, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, ये लोग तो बड़े आराम से एक जगह रुके, भारी कर दिया और रह गए बाबा मिलन सब एक तरफ रह गया और भारी। सीट मिली थी तो दूसरा आ गया, कहने का ये मेरी सीट है तुम जाओ उधर। उधर गए तो तीसरा आ गया, कहता ये मेरी है, मैंने रुमाल रखा था, उठो यहां से। उधर गए तो सेवाधारी आ गया, तुम यहां कैसे, तुम्हारी जाओ पीछे जाओ। सीट बदलते बदलते बाबा आए और चले भी गए। आए थे बाबा से मिलन मनाकर हल्का होने, मिलने के बाद और ही ज्यादा भारी, और उसमें सब होने के बाद जब बाहर निकले तो चप्पल ही नहीं है, चप्पल ढूंढ रहे, एक चप्पल हाथ में दूसरी मिल नहीं रही। और ट्रांसपोर्ट के वहां पहुंचे तो बस निकल गई। बस ही नहीं है, बोला था साथी को कि रुकना बस को, कैसे लोग हैं चले गए, अब हम क्या करें। ऊपर आए तो हमको जाना था ज्ञान सरोवर, पांडवन छोड़ दिया, अब यहां से वहां कौन छोड़ेगा। और मुरली चली थी हल्का, डबल लाइट फरिश्ता, सब उल्टा उल्टा हो गया। तो संगम युग अर्थात लाइट, चीजों को सीरियसली नहीं लेना है, ये बहुत बड़ी कला है। चीजें हो रही है ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो कोई जबरदस्ती कुछ जानबूझ के कोई कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे दोस्त माइंड नहीं करते, दोस्त होते हैं माइंड करते हैं एक दूसरे की बातों, नहीं करते, वैसे ये भी है, परिवार है, यहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा। तो यहाँ हल्के रहना है, लाइट रहना है, लाइट मूड। तो होली का चौथा राज लाइट मूड, पांचवा राज नहीं समान, पोतरा धोतरा दादा परदादा सब एक साथ मिलके मनाते हैं। यहाँ पर समान दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, मां सब भेदभाव भूल जाते हैं और फिर होली मनाते। तो यहां पर भी समभाव, सबके लिए एक ही दृष्टि, वो है होली मनाना। फिर उसके बाद में छठवा पिचकारी, ये बड़ा पावरफुल पॉइंट है, कई अलग अलग जगह पर ये आया है, तुम्हारी आंखें ही पिचकारी बन जाए। कब बनेगी? स्थिति उन आंखों के पीछे जो आत्मा है उसकी स्थिति बहुत ऊंची है, अलौकिक है, तभी उसमें से अलौकिक साक्षात्कार होंगे। जो आत्मा आएगी उसको अलौकिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि से, रूहानी रंग की पिचकारी इन आंखों से, तो अलौकिक दृष्टि की पिचकारी। उसके बाद में सातवा पास्ट इज पास्ट, कितना भी कड़वा हो पास्ट, कितना भी कटु हो, कितना भी कड़वा हो, कितना भी दर्दनाक हो, कैसा भी हो, और हर एक के साथ कुछ ना कुछ दर्द भरी घटनाएं हुई है। अगर हर एक अपनी दर्द भरी घटना को पकड़ के रहे और याद करते रहे तो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, जो हो गया वो हो गया। जैसे वो एक व्यक्ति जो इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है, और राह चलते उसे एक अजनबी कोई मिलता है और वो उसके साथ अपने जीवन की सारी बातें शेयर करने लगता है, मेरी पत्नी ऐसा करती है, ऐसा भोजन बनाती है, वैसा भोजन बनाती है, ऐसी अच्छी है वो, ये करती है, वो करती है, ये बेचारी दुखी रहती है वो जो उसको मिलती है, वो दूसरी स्त्री उसको बताते रहता है जीवन में खुश कैसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और मेरी पत्नी देखो कभी ऐसे करती है, कभी वैसे करती है। तो उसके साथ साथ ये जो दुखी रहती है महिला ट्रैवल में, वो भी खुश हो जाती है। ये कहानी हमको किसी ने बताई थी, कहीं तो आई है कहा। और लास्ट में ये दिखाया है उसमें कि ये जो पति है जो ये सारी बातें बता रहा था, लास्ट में उसको अपने घर लेके आता है तो पाता है इसकी जो पत्नी है ये तो कोमा में है कई सालों से, बोलती भी नहीं है, पहचानती भी नहीं है, और फिर भी हर चीज में वो कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, हर चीज में उसके साथ जो संवाद है इसमें क्या बड़ी बात है, तो छोटी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात, ट्रेन छूट गई छूट गई, वो कहती मेरा सामान, अरे सामान छूट गया आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। लास्ट में वो महिला कहती है इससे क्या बड़ी बात हो सकती है, वो तो बात ही नहीं करती, इतनी बड़ी बात, इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती। खुश, फिर भी खुश है, ये सब होते हुए भी खुश है। तो हर एक अपने अपने दुखों को अगर पकड़ के रहे तो कैसे जिएगा, फूंक दो दुखों को, उड़ा दो धूल में, हुआ बहुत बुरा हुआ ठीक है, पकड़ के थोड़ी रखना है, सभी के साथ है, होता है कुछ ना कुछ। तो होली अर्थात पास्ट इज पास्ट। तो इतनी सात बातें मुरलियों में बताइए। अभी होली के कुछ और अर्थ, आठवा होली अर्थात किसकी होली, समर्पण। होली अर्थात बाप की होली अर्थात सरेंडर। होली का एक अर्थ क्या है, मैं बाप की होली सरेंडर, ये आठवा अर्थ। नौवा अर्थ होली अर्थात पवित्र, होली बनना अर्थात प्योर बनना। होली का अर्थ क्या है, शब्दशः अर्थ होली अर्थात होली पवित्र, तो हमें होली बनना है होली पर, कोई भी अपवित्रता अंदर ना रहे, जरा भी किचड़ा ना रहे, और सबसे बड़ा किचड़ा है देहभान का, देहाभिमान का। कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था ना, कई कई बच्चे मगरूर हो जाते हैं। कौन सी मगरूरी? मुरली नहीं पढ़ते, और ऐसी छूट गई मुरली तो उसके लिए भी उत्तर दिया बाबा ने, 10-15 मुरली एक साथ पढ़ लो, 10-15 पढ़ लेना, ऐसे भी बोला है। तो ये समझ लेना मैंने जान लिया है, अहंकार आ जाता है, और ज्ञान में सबसे ज्यादा चांसेस है अहंकार आने के। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जाता है व्यक्ति का अहंकार भी बढ़ते जाता है। ज्ञान का सबसे बड़ी खोट क्या है? अहंकार। ज्ञान, ज्ञान का भ्रम कि मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया है। इसलिए ज्ञानी की पहचान है कि वो विनम्र रहे, कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो होली अर्थात प्योर, होली अर्थात पवित्र बनना। तो ये होली का 9वां अर्थ। 10वां होली में क्या करते हैं? फीस्टिंग। फीस्टिंग अर्थात भोजन, अच्छा अच्छा खाते हैं। उसमें क्या क्या बनाते हैं? पूरन पूरी, गुजिया। हाँ, करण जी। तो खाना पीना ये सब होली में बहुत चलता है। तो होली अर्थात दिल खुश मिठाई खाना, होली अर्थात खुशी की मिठाइयां खाना, खुशी खुशी खाना और खिलाना भी, खाते भी है और खिलाते भी है दूसरों को। तो भोजन का एक अर्थ, भोली का एक अर्थ है फीस्टिंग। फीस्टिंग अर्थात खाना। सन्यासी करते हैं फास्टिंग, हम करते हैं फीस्टिंग। फास्टिंग फीस्टिंग ये अंतर है दोनों में। हमारा सेलिब्रेशन है जीवन, हर चीज यहां सेलिब्रेट की जाती है। डेथ का भी सेलिब्रेशन होता है। संसार में कोई संस्था है कि जहां कोई मरता है तो हलवा बनता है? है क्या कोई? ढूंढ के दबाओ, शायद ही कोई संस्था होगी। हाँ, कुछ कुछ संस्था ऐसी है जहां पर डेथ भी सेलिब्रेट की जाती है। ऐसे कुछ कुछ है कि जहां पर कोई मरता है तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो एक अर्थ है होली का फीस्टिंग अर्थात पंच पकवान। उसके बाद में होली का अगला अर्थ है विक्ट्री, विजय। प्रह्लाद, पूतना और तीसरा कामदेव, काम को मार दिया था शिव ने, उसके यादगार में होली है। पूतना को मार दिया था लक्ष्मण ने। बेसिक्स कृष्ण ने, और पहला प्रह्लाद, प्रह्लाद और वो होली का। तो ये विजय, सत्य की विजय है, अच्छाई की विजय है बुराई पर, इसका यादगार है होली। ये 11वां अर्थ है उसका। उसके बाद में 12वां अर्थ, होली मोहल्ला, गुरु गोविंद सिंह विजय, वो भी है जीत प्राप्त की थी, फतेह, वाहेगुरु दी फतेह। कल गुरु नानक देव जी की जयंती थी ना, कल बहुत सारा सेलिब्रेशन था सब जगह पर, बड़े बड़े गुरुद्वारों में अखंड पाठ करते हैं, वहां पर लंगर लगता है, लंगर नॉन स्टॉप, कब भी आओ, रात को भी आओ, तभी भोजन तैयार, हजारों लोग खा के जाते, खाते रहते लंगर। इतनी सेवा भाव, इतनी सेवा भाव, बहुत अधिक सेवा भाव। इतनी सेवा तो और शायद किसी धर्म में नहीं होगी इतनी सेवा भाव जितनी सिख धर्म में है। लंगर लगता है, अखंड पाठ चलता है गुरु ग्रंथ साहिब का, जैसे 3-4 लोग बैठते हैं और पढ़ते रहते हैं, ऐसी बड़ी किताब, इतनी मोटी, टाइम उनका सेट होता है, ये 6 घंटा, फिर 6 घंटे के बाद दूसरी बैच, और अखंड पाठ 3 दिन का चलता है गुरु ग्रंथ साहिब का। तो नांदेड़ ये सब जगह जहां जहां मुख्य है वहां पर बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी एक है। उसके बाद में लठ मार होली, ब्रज की लठ मार होली, वो स्त्रियां मारती है और वो पुरुष उसको ढालते अपने आप को बचाता है। तो लठ मार होली अर्थात माया हमको मारे और हम अपने आप को बचाए, वो है होली। लठ मार देखा होगा ना, लठ मार की होली। हाँ, लठ मार होली, डंडे डंडे से मारती है पकड़ पकड़ के स्त्रियां, और वो अपने आप को बचाते हैं। ब्रज में मथुरा, मथुरा के आसपास, उसको कहते हैं ब्रज मार। यहां माया भी हमको पछाड़ती है, हमको भी फटकाती है, हमको भी अपने आप को बचाना है। तो होली का ये एक अर्थ। उसके बाद में 14वां दही हंडी। होली का एक अर्थ दही हंडी, कई कई जगह पर दही हंडी। एक तो कृष्ण जन्माष्टमी होता है, दूसरा होली में भी होता है मुंबई में, तो दही हंडी। इसका क्या आध्यात्मिक राज है? एक तो सब मिलजुल के करते हैं, यूनिटी। तो होली का एक अर्थ है यूनिटी, सब एक साथ मिलके भेदभाव सब भूल जाते और एक होकर। और वो क्या करते, गोपाल काला खाने का, उसमें वो सब जाति पाति सब हट जाता है, संस्कार मिलन की रास भी है वो एक, तो वो भी होली का एक अर्थ है।
जब हाईएस्ट पे पहुंचेंगे तभी प्रसाद
मिलेगा। बहुत, ये तो सेपरेट टॉपिक हो सकता है दही हंडी वाला, गोविंदा। तो ये भी होली में कहीं कहीं जगह, सब जगह नहीं होता है, ये केवल उधर मथुरा और नॉर्थ यूपी में होता है इस तरह का, बाकी सब जगह नहीं है। और होली का अर्थ, हाँ कहीं कहीं सम्मेलन भी होता है। कौन सा सम्मेलन? महामूर्ख सम्मेलन होता है होली में, महामूर्ख सम्मेलन होता है। स्वांग भी रचते हैं और
बुरा न मानो होली है।
हाँ बुरा न मानो आज होली, मुखोटा स्वांग स्वांग स्वांग। तो यहां माया ने स्वांग रचा है, ठगती है हमको, तो पहचान लेना है कि ये माया है। और होली का अर्थ, लड्डू मारते हैं
तो कौन कितने कैच कर सकते
हैं, इसको क्या कहते हैं?
नहीं,
इसको प्रथा को क्या कहा जाता है और कहां होती है? लड्डू मार होली, लठ मार तो पता था, ये लड्डू मार नहीं आई है। लड्डू मार होली, चलो ठीक है। और होली का अर्थ आशीष भाई, और भी कोई अर्थ है होली का? होली का और कोई अर्थ? हाँ हाँ अच्छा, सहयोग। होली का एक और ये भी है कि कौन सा ऋतु आरंभ हो रहा है, ठंड बंद खत्म हो रही है और वसंत आरंभ हो रहा है, वसंत आ रहा है, नया युग आ रहा है, वो भी होली का एक अर्थ है। और एग्रीकल्चर, कृषि, कृषि में भी फसल जो आ गई है उसको नेक्स्ट काटने का वो समय है। तो ये कुछ बातें हैं होली की। और वो ढोलक और गाने बजाना वो भी करते हैं, वो भी है होली का। तो ये होली के कुछ राज है इस मुरली में। आगे आगे क्या कहा बाबा ने, और बहुत सारी बातें हैं मुरली में, और क्या कहा? पक्का लगा या कच्चा लगा। और टीचर्स को क्या कहा? तैयार रहना है, तैयार रहना, किसी के लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है। वो आ जाए, वो आ जाए, जिज्ञासु आ जाए, इसको आ जाए, उसको आ जाए, एवर रेडी अर्थात अभी के अभी तैयार है। किसी के लिए हमको वेट करना नहीं है, किसी के लिए हमको रुकना नहीं है। यहां पर रुके तो गए, तो ये एक चीज बताई। दूसरा, बाप और मैं, दूसरा और कोई नहीं, उसमें सब आ जाता है। क्या क्या आ जाता है इसमें? सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने, सारा ज्ञान, सारा गुण, सारी शक्तियां, सब कुछ आ जाता है इसमें। तुमको और कुछ भी चीजों की आवश्यकता नहीं रहती है जब बाप मिला। और तुम्हारी मौज सबसे ज्यादा है, किन किन से ज्यादा है? शास्त्रवादियों से ज्यादा है, नवदा भक्ति करने वालों से ज्यादा है, साइंस दान से ज्यादा है, कितने साहूकार है उनसे ज्यादा है, और वेद पाठ करने वालों से ज्यादा है। ये कि कोई भी हो, बाबा ने कहा कि जाओ जाकर लेके आओ किसी को, तुमसे तुम्हारी मौज से ज्यादा किसी की मौज नहीं है। तो हम बेफिक्र बादशाह है, बिन कौड़ी बादशाह है, हम बे परवाह नहीं, बे गमपुर के बादशाह है, बेपरवाह नहीं है, बेगमपुर, बेकौड़ी और बेफिक्र बादशाह है। किसी बात की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं है, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, बेताज बादशाह है। तो ये भी कुछ बातें कही बाबा ने। उसके बाद में लास्ट में मैं और बाबा, और कोई नहीं। जो जैसा बाप वैसा मैं, उसके गुण उसकी शक्तियां, उसके जो बोल वो मेरे बोल, उसके जो कर्म वैसे मेरे कर्म। इसी से क्या बनेंगे? सफलता मूर्त। और भी कोई बात है होली के विषय में? तो धारणा के लिए मुख्य सार हल्के रहना, धारणा के लिए मुख्य सार हल्के रहना, धारणा के लिए मुख्य सार पवित्र बनना, धारणा के लिए मुख्य सार जैसा बाप है वैसा, धारणा के लिए मुख्य सार अपने नशे में रहना। रंग पक्का लगे, कच्चा नहीं लगना चाहिए, ऐसा पक्का रंग, ऐसा पक्का रंग कि फिर कोई इस संसार का हमको उसका रंग न लगा सके, इतना बाप के रंग में रंगे हुए। कच्चा रहा तो संसार का रंग लग जाएगा। फिर जैसे सफेद कपड़े सिलाई के मशीन में डाले और उसमें एक कलर वाला डाल दिया, क्या करते हैं, क्या हो जाता है निकलने के बाद? वो सारे रंग जाते हैं। धुलाई, हम सिलाई बोला क्या? धुलाई की मशीन तो उस मशीन में डालते हैं तो सारे रंग रंग जाते हैं, सारे सफेद जो थे वो कुछ कुछ हो जाते हैं, और वो जो कलर वाला है उसको कुछ नहीं होता है। तो हमारा रंग दूसरों को लग जाए, दूसरों को हमको नहीं लगे, हमें अपना रंग दूसरों को लगाना है। हम प्रभु प्रेम के रंग में रंगे हैं, परमात्मा प्रेम के, परमात्मा नशे के रंग में है। उस दिन मुरली में था, नशा तो बहुत चढ़ता है पर थोड़ी देर के बाद सोडा वाटर हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो नशा निरंतर रहे, कायम रहे, कम हो ही ना ज्ञान का नशा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पकड़ के रखने पड़ेगा ज्ञान को, ऐसे छाती से ज्ञान की बोतल लेके घूमना। जरा कम होते दिखाई दिया, जरा सब क्लियर क्लियर दिख रहा है, मतलब कम हो गया, अभी फिर पी लो। पिए हुए पता तो चलना चाहिए, पिए हुए की निशानी मतलब थोड़ा डोलना चाहिए। तो तो अच्छा, होली खेलते समय पुराने कपड़े पहनते हैं, इसका क्या अर्थ है?
यहाँ तो दूसरों के कपड़े पहन लेते हैं।
ये भी सही है, दूसरों के पहन लो और फिर नहाते हैं। तो होली अर्थात होली, होली अर्थात होली, बाप की होली, होली अर्थात हो गई, पुराना सब पास्ट, अब उसको पूर्ण विराम। पास्ट इस पास, गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं है, बंद हैचेट। पुरानी बातों को याद करते नहीं बैठना है, पुराने इसने मुझे ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, जिसने जो कहा फुल स्टॉप, कोई डिस्कशन नहीं। पास्ट इस पास्ट में क्या क्या आएगा? नो डिस्कशन, नो डिबेट, नो ब्लेम ब्लेम, नो रिमेम्बरिंग, याद ही नहीं करना उसको। याद करोगे तो उसी स्थिति में वापस स्थित हो जाते हैं। जरा भी याद किया, थोड़ा भी ये सोच के भी मुझे उसे सीखना है, चलो मैं याद करता हूं क्या हुआ था, वो सीखना रह गया बाजू में, उसकी याद आ गई और रोना चालू। याद किया था किस लिए? ताकि सीखे, चलो मुझे सीखना है। पर इतना साक्षी हम रह नहीं पाते, उसके साथ मिल जाते घटना, क्योंकि बहुत प्रभावित करने वाली घटना है। इसके लिए उसको याद नहीं करने। हाँ, एक चीज किया जा सकता है, अमृत वेला उस दृश्य को, जब हम अपने बहुत पावरफुल साक्षी स्थिति में है, तब उस दृश्य को एक बार आंखों के सामने से गुजार दो, केवल अमृत वेला। दिन भर नहीं, दिन भर करेंगे तो आंसू आ जाएंगे, वापस दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अमृत वेला बहुत पावरफुल स्टेज होती है, हम साक्षी भाव में स्थित है उस समय। उस सीन को बीच में एक बार लाना है, हुआ और चला गया, बस एक बार देख लेना है। क्यों? क्योंकि हमको उसको न्यूट्रलाइज भी तो करना है, न्यूट्रलाइज करना है उसको। एक है बिल्कुल भूल ही जाना उसको, पर वो नहीं भूला तो वो दबा हुआ रहेगा, पर वो भी ठीक है, क्योंकि लंबा समय जो चीज भूलना है उसको लंबा समय तक अगर याद नहीं किया जाए तो उसकी धीरे धीरे मेमोरीज कम होती जाएगी, फिर उसकी डिटेल्स अगर हम रोज सुनाते रहेंगे, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, लोग मिलने आते, अरे क्या हुआ, अरे मैं एक गाड़ी इधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी, गलती उसकी थी इसलिए फ्रैक्चर हुआ, वो गया। फिर दूसरा मिलने, अरे क्या हुआ, अरे मैं इधर से जा रहा था, वो उधर से जा रहा था, गाड़ी आ गई थी, गलती उसकी थी, फ्रैक्चर फिर हुआ, वो चला गया। तीसरा आ गया, अरे हमने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, अरे मैं तो ऐसे जा रहा था, वो उधर से जा रहा था, गलती उसकी थी। कितनी बार सुनाते हैं पेशेंट्स, ऐसे कैसे हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं उधर थोड़ी गई थी तो सर्दी लग गई, हो गया। अरे क्या हुआ? सर्दी लग गई। क्या हुआ? सर्दी लग गई। अपनी बीमारी की स्टोरी कितनी बार सुनानी पड़ती है, और हर बार नया व्यक्ति आता है, फोन, हमने सुना एडमिट हो, थोड़ा सा स्टेटमेंट बना के रखना पड़ेगा क्या सुनाना है। ज्यादा मिर्च मसाला वाला किसी को ज्यादा मिर्च मसाला लगा के सुनाते, जो थोड़े अपने जिनसे हमको थोड़ा कुछ चाहिए उनको और ज्यादा सुनाते हैं। हमको रहम पाना चाहिए ना, हमको थोड़ा दर्द है, हम कहेंगे बहुत दर्द है, अभी तो उठा भी नहीं हूं। सहानुभूति प्राप्त होती है ना अपनों से ज्यादा मिले तो। कितना माँ के सामने छोटा सा बच्चा होता है ना, माँ के सामने क्या करता है, बहुत उसको ज्यादा दर्द होता है। फिर माँ क्या कहती है, ये इसने धरती ने मारा ना, धरती को मारती हूँ, ऐसे इसने मारा ना तुझे, धरती को पैर मारती है, इसको मैं मारती हूँ। और बेटे को थोड़ा सा दर्द होगा, माँ आते ही जोर जोर से चिल्लाता है, या तो डॉक्टर के सामने, अभी तक लेटा है आराम से, डॉक्टर आते ही आ आ, ज्यादा दर्द बढ़ जाता है। तो रिपीट रिपीट करते रहते हैं हम अपने दुख दर्द की कहानियां, उससे ज्यादा बढ़ती है। नया व्यक्ति आया उसको पूरा सुनाते, मेरे साथ आप बीती, मेरे साथ क्या क्या हुआ,
उसको इंटरेस्ट नहीं सुनने।
वैसे किसको कहां इंटरेस्ट है, एक अपना दुख किसी को बताओ, डबल अपना बताता है, हर एक अपने दुख दर्द में डूबा हुआ है, किसी को क्या लेना देना है तुम्हारे दुख से, हर एक अपने ही दुख दर्द में कितना डूबा है, आकंठ। तो पास्ट इज पास्ट, ये होली का वास्तविक रहस्य है, भूल जाना, कुछ भी याद नहीं करना, बस अब नया और नए से जुड़ना है, नया कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पुराना याद आते रहेगा। वर्तमान को बिजी कर देना है खुद को, नई चीजों में, नए बातों में, नए टॉपिक्स में, नई मुरली के चिंतन में, खूब चिंतन करो, कल कहा बाबा ने, थोड़ा बहुत भी नहीं, खूब खूब भरपूर भरपेट चिंतन करो। कोई भी एक टॉपिक लेना और चिंतन, चिंतन को गहरा करना है। इसलिए मुरली, जैसे आज की मुरली है, पढ़ते पढ़ते पहले एक लाइन पढ़ो फिर रुको, फिर एक लाइन पढ़ो फिर रुको, गृहस्थ व्यवहार यहीं रुक जाओ। गृहस्थ क्या होता है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा है। बाबा कहते तुम भले सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाबा तो सिर्फ डायरेक्शन देते, बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों से ममत्व निकाल, मुझे याद करो। अब इतना पढ़ लिया, अभी रुक जाओ। ममत्व क्या होता है, ममता क्या होती है, क्यों ये डायरेक्शन दिया गया है, देह क्या है, देह के संबंध क्या है, और क्यों वो खींचते, थोड़ा थोड़ा चिंतन करना है। और जब चिंतन ब्लॉक हो जाए, आगे अब बढ़ ही नहीं रहा है, तब छोड़ देना, फिर आगे चलो, क्योंकि एक टाइम आता है कि जब आगे समझते हैं, अब आगे क्या और सोचूं,
ब्लॉक तो जल्दी हो जाता है।
थकान तो लगेगी, थिंकिंग इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ये छोड़ दो, फिर आराम से सारे विचार फटाफट नीचे उतरने लगते हैं सीढ़ियों से, ये खेलू वो करूं, फैंटेसीज बहुत आसान है, कल्पनाएं करते बैठना, ख्याली पुलाव बनाते बैठना, अपने ख्याली पुलाव की प्लेट चूल्हे से बाहर निकालनी है। बहुत हो गया, ये थिंकिंग बहुत कठिन काम है, चिंतन चलना, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए चिंतन चाहिए। गृहस्थ क्या होता है, गृहस्थ आश्रम क्या है, उसमें पवित्र गृहस्थ आश्रम की क्या परिभाषा है, ये टॉपिक है। जैसे पवित्र गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए, जैसे एक उदाहरण तो अभी वर्तमान में ही विद्यमान है, डॉक्टर राजू जो विजयवाड़ा में नेचुरोपैथी का क्लिनिक चलाते, मधुबन में से कितने भाई वहां जाते हैं, वो लोग युगल है, तो वो जो बहन है बहुत पक्की है, उसको तो शादी से पहले ज्ञान मिल गया, और जब शादी हुई तो वो जो भाई था उसको, उसने कहा मुझे पवित्र जीवन रहना बिताना है, और उसने कहा कि मुझे भी ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सेवा करनी है। बहुत अच्छा समझौता दोनों के बीच, और कितनी सेवा कर रहे हैं अभी दोनों मिलके, प्योर लाइफ, पवित्र गृहस्थ आश्रम है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की थी, हायर लेवल की, कि मुझे उसको इंटरेस्ट सेवा में था, ज्ञान में कम था पहले, अभी तो ज्ञान में है सब दोनों, पर बता रहे। तो पवित्र ग्रह, तो ये एक टॉपिक है पवित्र गृहस्थ, यहां से लिया, अब इसका चिंतन करना है, विस्तार करना है। मन इसमें बिजी रहेगा तो ही वो नीचे नहीं आएगा, नहीं तो नीचे आते रहता है। कहा ना, चिंतन कठिन काम है, पर एक बार चालू हो गया कि अपने आप चलेगा। जैसे साइकिल रोक दो, उसके बाद भी चलती रहती है, पैडल चलाना बंद कर दो, फिर क्या होता है, पैडल बंद करने के बाद भी चलती रहती है, वो मोमेंटम उसको आगे लेके जाता है। उसी तरह चिंतन करते रहना, करते रहना, और कभी चिंतन रुक भी गया ना, तो पुराना किया हुआ चिंतन काम आएगा, फिर आगे चलाएगा गाड़ी को। तो वैसे निरंतर चिंतन होते रहे, मनन होते रहे। अच्छा, ओम शांति।
हो सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए,
हो सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए, हो आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए।